ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मलेशिया के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। मोदी इब्राहिम वार्ता का मुख्य फोकस जो है वो व्यापार और निवेश का विस्तार करना और उभरते क्षेत्रों में सहयोग तलाशना है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमने तय किया है कि भारत मलेशिया साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। और देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया, न सिर्फ दोस्त बल्कि भाई भी बताया। भारत और मलेशिया के सुदृढ़ और प्रगाढ़ हो रहे संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। स्कंद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी में।
नमस्कार।
भारत और मलेशिया पुराने पार्टनर रहे हैं, दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारियां हैं और वहां के प्रधानमंत्री के अभी के भारत दौरे के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आने वाले समय में भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंधों को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं?
मलेशिया इतना खास देश है पूर्व एशिया में, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मलेशिया की पॉपुलेशन 34 मिलियन है, 3.5 करोड़। पर कैपिटा जो उनकी आय है मलेशियंस की, वो करीब $13,000 है, तो वो काफी समृद्ध देश माना जाएगा ईस्ट एशिया में। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 0.8 है। और हमारे श्रोताओं को ये शायद जानकर आश्चर्य हो कि 14वीं शताब्दी तक ये पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब बुद्धिस्ट और हिंदू थे, और इस्लाम 15वीं शताब्दी से आया, वो एक अलग इतिहास है। पर दोनों मलेशिया और भारत ब्रिटेन के कॉलोनीज 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के मध्य तक। और जब 60s में मलेशिया भी आजाद हुआ तो इनके पहले प्रधानमंत्री दातो तंको अब्दुल रहमान से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध थे। उन्होंने 1962 की हमारा जो युद्ध चीन के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें वो भारत के साथ खड़े थे, भारत का सहयोग किया। इब्राहिम साहब से पहले जो उनके प्रधानमंत्री थे श्री महातीर मोहम्मद, उनका रुख भारत के प्रति कुछ ठीक नहीं था। और जो बदमजगी हुई संबंधों में 2019 में, जब भारत ने कश्मीर में 370 कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री महातीर मोहम्मद, उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ बहुत गलत बयान दिए पाकिस्तान के संदर्भ में। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री श्री अनवर बिन इब्राहिम आए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया है, ये बताता है कि अब मलेशिया का सोच परिवर्तित हो चुका है और भारत से मित्रता के रास्ते पर ये फिर चल पड़ा है। और हमारी जो ईस्ट पॉलिसी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए मलेशिया का बहुत ही प्रमुख स्थान है। और आसियान संगठन, जिसके साथ भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें भी मलेशिया की आवाज बहुत बुलंद है। इस सब परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये भी देखना होगा कि पिछले 5-6 साल बाद मलेशियन प्रधानमंत्री भारत आए हैं, और ये भविष्य के लिए जो रोड मैप, जो नक्शा आज हमारे प्रधानमंत्री और दातो श्री अनवर इब्राहिम जी ने खींचा है, वो बताता है कि भविष्य में भारत और मलेशिया के संबंध कितने प्रगाढ़ होने वाले हैं, इकोनॉमी में भी, स्ट्रेटजी में भी, डिफेंस में भी, और पीपल्स टू पीपल रिलेशनशिप में भी।
भारत और मलेशिया के आपने संबंधों की बात की, प्राचीन उसका जो इतिहास रहा है आपने वो भी बताया, और जहां तक हमें भी ख्याल आ रहा है कि मलेशिया भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है, एक मिलेनियम से भी ज्यादा, चोला साम्राज्य के समय से ही दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ता सी रही है। हालांकि 370 हटने के बाद उनके बयान थोड़े से ये थे, लेकिन अब मलेशिया ही क्या, पूरी दुनिया लगभग मान चुकी है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अब जो मलेशिया के साथ आने वाले दिनों में रणनीतिक अपनी साझेदारी है, वो साउथ ईस्ट की वर्तमान राजनीति को देखते हुए और वर्तमान ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कितना महत्वपूर्ण है भारत के साथ मलेशिया का और गहराई से जुड़ना?
भारत की जो पूर्व की तरफ देखने की नीति है, उधर कार्य करने की नीति है, उसमें मलेशिया हमारा एक बहुत अच्छा भागीदार बन सकता है। ऐसा कुछ समाचार आया है कि शायद मलेशिया ब्रिक्स संगठन में आना चाहता है और जो रशिया में मीटिंग होगी तो शायद उस पर कुछ बातचीत हुई होगी भारत के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच में। इसके बाद जो दक्षिण चाइना सी, उसमें जो चीन के दावे हैं कि पूरा साउथ चाइना सी चीन का है और हर देश से वहां से उनके कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें मलेशिया के खिलाफ भी चाइना के दावे हैं और उस हिसाब से मलेशिया और चाइना के बीच में कुछ रस्साकशी है। पर अगर आर्थिक संबंधों को देखा जाए तो मलेशिया और चीन के संबंध बहुत गहरे हैं और मलेशिया का जो सफलता रही है कि काफी जो ग्लोबल सप्लाई चेन हैं, जैसे कंप्यूटर्स के हो, आप लोग भी अगर कोई कंप्यूटर कभी खरीदें तो दिख जाता है कि ये कंपोनेंट मलेशिया का बना हुआ है। जहां भारत इस समय बहुत प्रयत्न कर रहा है कि जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन हैं उसमें भारत की कंपनियां और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी उनमें शामिल हो, उसमें मैं समझता हूं कि मलेशिया एक हमारा भागीदार हो सकता है, हमारा एक समर्थक हो सकता है और हमारा एक पार्टनर हो सकता है। आज जो बात प्रधानमंत्री ने दो तीन फ्यूचर की डायरेक्शंस के बारे में भी बताया, डिजिटल स्पेस के बारे में बताया, हमारा जो एक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है कि भारत में ही चिप्स बने, उसमें भी मलेशिया का कुछ भागीदारी हो सकती है। जो भी अब बातचीत आज हुई है उनको अब हमारे प्राइवेट सेक्टर को, हमारे पूरे देश के और संस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा, पर दोनों नेताओं ने एक रास्ता भविष्य के लिए और आर्थिक गठबंधन के लिए, सहयोग के लिए, साझेदारी के लिए खोल दिया है।
मलेशिया जो है वो भारत के लिए एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एशियन रीजन के लोग वहां जाते हैं, भारत के लोग भी घूमने कुआलालंपुर अक्सर जाते हैं, तो दोनों देशों के बीच क्या पर्यटन में भी सहयोग की संभावनाएं आप देख रहे हैं?
कोविड से पहले तो करीब करीब 8 लाख भारत से टूरिस्ट गया था मलेशिया, और मलेशिया ने कुछ इस तरह किया है कि भारत और मलेशिया के बीच में जो फ्लाइट्स हैं वो महंगी नहीं है और बड़े अच्छे पैकेजेस वो देते हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरह होना चाहिए कि मलेशिया के टूरिस्ट भी भारत आए। इसके पीछे देखिए एक चीज और है कि मलेशिया की 6.7% जनता भारतीय मूल की है,
जी
करीब 3 मिलियन। ये जब ब्रिटिश कॉलोनी था मलेशिया, मलय पेनिनसुला कहा जाता था उसको, उस समय ब्रिटिश लोग काफी नागरिकों को मेनली दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से लेकर वहां गए थे और उन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया था, और इस समय जो ये 30 लाख भारतीय हैं वो उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। और कुछ ये जान के अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को कि वो भारत से बहुत ही जुड़े हुए हैं ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, और वहां मलेशिया में 20,000 मंदिर, 120 गुरुद्वारा हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वहां भारतीय मूल के लोग अच्छा कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं।
इस्कन साहब, आपने मलेशिया की आजादी की बात की, भारत के आजाद होने के लगभग 10 वर्षों बाद 1957 में मलेशिया आजाद हुआ और उसके बाद से ही उसके राजनयिक संबंध रहे हैं भारत के साथ, और हाल के दिनों में भारत और मलेशिया की रणनीतिक साझेदारी जो है उसके भी 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस रणनीतिक साझेदारी में एक नई गति आई है और साथ ही शिष्टमंडल स्तर की भी वार्ता हुई। साथ ही अगर आप देखें तो इस वक्त भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे हम बैठे हुए हैं, जल्दी ही 3री बनने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो दुनिया में चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है भारत का, तो ऐसे में मलेशिया जो है वो फूड प्रोसेसिंग में भी काफी आगे है। ये भी बात चल रही थी कि भारत से फूड सिक्योरिटी को लेकर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहां इम्पोर्ट कुछ बढ़ाएगा, इससे उनका भी फायदा होगा और भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इसमें क्या कुछ संभावनाएं आप देख रहे हैं?
जी हाँ, जो इस समय जो भारत और मलेशिया के बीच में व्यापार है पिछले वर्ष 20 बिलियन डॉलर का था, और उसमें एक बहुत मात्रा है, भारत पाम ऑयल वहां से आयात करता है, करीब 2.5 मिलियन टन पिछले साल किया था, 20% उनकी टोटल प्रोडक्शन काम करते हैं, और भारत उनको चावल निर्यात करता है, 2 लाख टन पिछले साल दिया था, फिर और भी उन्होंने मांगा था। पर अब इसको एक लेवल और बढ़ाया जाए और किस तरह फूड प्रोसेसिंग की तरफ भी दोनों देशों में सहयोग हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि भारत के जो खेतीबाड़ी करने वाले हैं, किसान हैं, उनकी आय दुगनी हो जाए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो वैल्यू एडिशन हो, गांव में ही हो, और जो भी खाद्य पदार्थ वो पाते हैं उसकी प्रोसेसिंग हो और उस विदेशों में भी निर्यात किया जाए, और इसमें भारत और मलेशिया अवश्य सहयोग कर सकते हैं।
मलेशिया का जो नॉर्दर्न स्टेट है, अगर हम नक्शे पे देखें दुनिया के, तो उसका जो उत्तरी भाग है वहां पे केदा नाम का जो शहर है वो भारत के अंडमान निकोबार से एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखता है, दोनों के बीच में दूरी काफी कम है। तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी को देखते हुए, कम दूरी को देखते हुए, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना भी की जा सकती है ताकि दोनों देशों के बीच और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और बढ़े?
इस संभावना को भी देखा जा सकता है, पर मैं समझता हूँ कि जो पूर्व एशिया के देश हैं वो सबसे अधिक चाहते हैं कि भारत उस पूरे क्षेत्र में सी लाइंस खुली रहें और इंडियन ओशन, पूरा जो भारतीय सागर है, वो पीसफुल रहे और वहाँ किसी भी तरह का अवरोध ना आए। ये जो व्यापार होता है उसमें मैं समझता हूँ कि भारत अपना एक दायित्व निभा रहा है, और जितने देश पूर्व एशिया के हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, वो भारत को इसमें और आगे स्ट्रांग देखना चाहते हैं कि उनका जो विदेश व्यापार है उसमें कोई अवरोध ना आए और कोई इस तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो इस क्षेत्र में, और इसमें भारत और मलेशिया मिलकर काम कर सकते हैं। ये कॉरिडोर भी उसी तरह काम करेगा कि कोई बिना किसी अवरोध के आदान प्रदान हो समुद्र के रास्ते से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक की मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ, इस बैठक में फिनटेक, सेमीकंडक्टर, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा भी कर रहे थे, साथ में रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा और व्यापक है अभी, और साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता का खास तौर पर उल्लेख किया। साथ ही मोदी जी ने कहा कि दोनों पक्ष मलेशिया के पेनेट के साथ भारत की यूपीआई को जोड़ने पर भी काम करेंगे। सेमीकंडक्टर तो है ही, जिसमें भारत अभी बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है, कई विश्वविद्यालय सेमीकंडक्टर से संबंधित खोले गए हैं और अलग से डिपार्टमेंट स्थापित किए गए हैं ताकि न सिर्फ हम अपने देश की आवश्यकता को पूरी कर सके इस मामले में, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके साथ साथ फिनटेक, रक्षा उद्योग और जो भारत की यूपीआई है, इसमें जिसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, आने वाले समय में मलेशिया के साथ किस तरीके के टाई अप्स को आप देख पा रहे हैं?
देखिए, भारत के नेता, मलेशिया के नेता, ये अगर भविष्य की तरफ देख रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो बिल्कुल एक नया ही क्षितिज खुल रहा है, और उसमें भारत की एक तो मान्यता है, एक स्थान है, और दुनिया जानती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो 2000 से पहले भारत को कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर पिछले 25 साल में भारत उसमें बहुत आगे है और भारतीय बहुत आगे हैं जहां भी वो काम कर रहे हैं। तो दूसरे देश भारत के साथ भागीदारी करना चाहते हैं, और भारत ने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं कि हम फिनटेक हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जैसे सर्वर कैपेसिटी और तरह तरह के नए इनिशिएटिव लिए हैं कि भारत बड़ी नई टेक्नोलॉजीज की दिशा में आगे बढ़े, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे इनोवेटर्स को, हमारे स्टार्टअप्स वालों को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उनको यहाँ उपलब्ध हो। तो इस रेलगाड़ी पर हमारे मित्र देश भी आना चाहते हैं और बैठना चाहते हैं और उनका स्वागत। आपने यूपीआई की बात की, तो अभी 2 साल पहले भारत और मलेशिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वहां के बैंक ने एक समझौता किया था कि एक रुपी में और उनकी रिंगित में व्यापार में लेना देना है, पेमेंट है, वो हो जाए। तो इसका मतलब है कि रुपया वहां पे अब एक एक्सेप्टेड करेंसी है उनके बैंकिंग सिस्टम में, और उससे ये रास्ता खुलता है कि वहां यूपीआई, कम से कम भारत के जो टूरिस्ट है, जो सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट प्रयत्न करती है कि भारत का अगर कोई पर्यटक बाहर जाता है, यूएई हो, अभी प्रधानमंत्री गए थे वहां भी हुआ था, कि हम अपने यूपीआई का, हमारा जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे वहां पेमेंट हो जाए, और फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन का जो लॉस होता है हमारे पर्यटक को, वो न हो और सीधा रुपए में वो हो जाए। इस दिशा में मैं समझता हूँ बहुत ही जल्दी कुछ नतीजे सामने आएंगे।
भारत और मलेशिया संबंधों पर बातचीत करने के लिए एसकन रंजन तयाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत मलेशिया के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।